اس کے بعد اگلی آیت جس کا آپ کو ٹاپک لکھا ہے آیت بر، بڑی خوبصورت آیت ہے، کنسائزڈ ہے، بلکہ اگر میں تھوڑا سا آپ پہ بوجھ نہ پڑے تو یہ بتا دوں، یہاں سے سورت بقرہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو اینڈ تک چلے گا، یعنی اس ایک آیت آیت بر کی تفصیل اب اگلی آیت 178 سے لے کر تقریباً 283 آیت سے پہلے پہلے جو آیتیں ہیں وہ ساری اسی موضوع پہ ہیں. چلے اس کا ترجمہ پڑھ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق کو باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی لوگ ہیں. آپ نے ترتیب پہ نظر ڈالی، سب سے پہلی جو نیکی کسی کو چاہیے، آج کچھ شخص ریورٹ ہوا، اللہ نے اس کو اسلام دیا، آپ اس کو سکھانے لگ گئے نیل پالش لگا کے نماز نہیں پڑھتے، سور کا گوشت حرام ہے، اور اسلام میں مکس گیدرنگز ٹھیک نہیں ہیں، بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ شپ ٹھیک نہیں ہے، تو بیکار بات ہے. سب سے پہلا نقطہ، من آمن باللہ. اس ایک آیت کے اوپر دو سیریز کا ایک سیٹ ہے، نیکی کیا ہے یا نیکی کیا ہے یا اس کا شاید کچھ اسی طرح کا ٹاپک ہے، آپ سنیں گے تو پورا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. میں نے اس ایک آیت سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میرے حال بیسیوں بار اس کے اوپر درس دیے ہیں. اٹس مائی فیوریٹ موسٹ آیت. آج ترتیب بدلی ہوئی ہے. کیا آج آپ دنیا میں کچھ لوگوں کو نہیں دیکھتے جس کو جو دین کا حصہ اچھا لگتا ہے نا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے؟ مسئلہ آپ دیکھیے، اگر دین کے نام پہ بھی دیکھیں کچھ کہتے ہیں صرف تبلیغ، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، کچھ کہتے ہیں صرف جہاد، صرف جہاد، صرف جہاد. تیسرا کوئی شخص ہے تو وہ اٹھ کے آتا ہے کہتا ہے سوشل ورک، سوشل ورک، لوگوں کی ہیلپ کرو. کسی کو آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، میں اتنے لوگوں کی مدد نہیں کرتا. بھئی آپ نماز پڑھیں، آپ کدھر چلے؟ نہیں وہ میں کسی کو رائڈ دینے جا رہا ہوں. بھئی آپ کی وہ رائڈ ایک سوشل ورک ہے، آپ کی نماز آپ کی طرف ہے. تو آج دین خلط ملط ہے، جیسے ایک پٹاری میں ساری چیزیں ڈال کے ان کو مکس کر دیں. یہ ایک ترتیب ہے، آپ اس پہ 1 2 3 لکھے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے گھر کے لیے. من آمن باللہ پہ 1 لکھیے، والیوم الآخر جو جو چیزیں آ رہی ہیں نا اس کو 1 2 3 کرتے جائیے. یہ بالکل جامع تصور ہے، کمپریہنسو گڈ ڈیڈس کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ شریعت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اخلاقی قوانین یعنی مورل لاز، اور دوسرے شریعہ لاز. ان دونوں کو جمع کریں، بالکل ایسے جیسے ہمارا جسم ہے نا، اس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دل دماغ سب ہیں. اب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی ہیں تو ہم ہیلدی فیل کرتے ہیں. آنکھیں نکال دیں اندھے ہو جائیں گے، کان نکال دیں بہرے ہو جائیں گے، زبان نکال دیں گونگے ہو جائیں گے. اسی طرح ہر نیکی کا اسلام میں کہیں نہ کہیں حصہ رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گی. اچھا جی وہ فلاں حجاب پہنی ہوئی تھی غیبت کر رہی تھی، میں نہیں حجاب پہنوں گی. آپ مجھے بتائیں کبھی کسی نے ایسا کہا وہ فلاں، میں اب وہ فلاں ڈیزائنر کا سوٹ نہیں پہنوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پہن کر فلاں جگہ کوئی غیبت کر رہی تھی سسٹر، تو آج سے میں وہ جوڑا نہیں پہنوں گی. کوئی کرتا ہے؟ کبھی بھی دنیا کے معاملوں میں تو ہم ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ تم نیکی کا مکمل درخت بنو، سرسبز درخت بنو. اور اس آیت کا ٹاپک لکھ لیں القرآن و حیاتی، صرف اس ایک آیت پہ میں اور آپ عمل کر لیں، ہماری پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے گی. قرآن ہماری زندگی کے ہر پہلو کو تر کرتا ہے. جیسے پچھلے پارے میں جو آیت تھی نا فتوح میں نون ابھی بادل کتاب، تو اس پارے کی اس آیت کو نوٹ کر لیں. پورے مسلم بنو اور خوبصورت طریقے سے نیکیاں کرو، اور نیکی کرنے کی عرض بہت ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اس ٹاپک کو ضرور سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آج بہت مسکنسیپشن ہے. آپ دیکھیے چار قسم کے گروہ دنیا میں آپ دکھیں گے، کچھ کہتے ہیں صرف عبادت دین ہے، کچھ کہتے ہیں صرف اخلاق دین ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم چور تو ہیں لیکن ہم اپنے محلے میں چوری نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں ہم پروسٹیٹیوشن تو کرتی ہیں لیکن ہم غریبوں کو پانی بھی پلاتے ہیں. ارج ہے، خواہش ہے نیکی کی، لیکن پوری نیکی کس کی ہے؟ جو اس پوری آیت پہ عمل کرے. کہتے ہیں ایک جگہ کچھ اندھے تھے، یہ انگلش کی کہانی ہے، اس کا خلاصہ ہے، 9 اندھے تھے. تو وہ کسی جگہ گئے، لوگوں نے کہا شہر میں ہاتھی آیا ہوا ہے. اب لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، कहने लगे कि चलो देख कर आते हैं। अब वो नौ नाबीना यानी ब्लाइंड पर्सन थे, वो भी चले गए। अब एक का हाथ हाथी की सूंड पे पड़ा, दूसरे का हाथी की दुम पे पड़ा। जिसका दुम पे पड़ा उसने कहा हाथी तो रस्सी की तरह का होता है। बाद में आके सब पूछ रहे हैं कैसा था कैसा था। जिसका हाथी के पेट पे हाथ डला कहने का हाथी तो ढोल की तरह होता है। जिसका हाथी के कान पे हाथ डला वो कहने लगा कि हाथी तो बिल्कुल गोभी के पत्तों की तरह होता है। अब आप बताइए सब कौन है? कहते हैं दे ऑल, ये सब कौन थे? पार्शली यानी टुकड़े टुकड़े कर लें किसी चीज़ के, अधूरे तौर पे, तो ये सब ठीक थे क्योंकि इन बेचारों के हाथ में लगा ही वो। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो सब रॉन्ग है। पूरा हाथी किसी ने नहीं देखा। आज मैं और आप जब पूरा इस्लाम देखते हैं ना, इट्स सो ब्यूटीफुल। इससे खूबसूरत दीन कोई नहीं। मैं सोचती हूँ जितना खौफ दीन का, दीन पढ़ के दूर हुआ है, सारी ज़िंदगी इसके खौफ में ही रह गए। कितने लोग हैं जो इस किताब के करीब आज भी नहीं आ रहे। हाय हाय, ज़िंदगी मुश्किल होगी? नहीं, मुश्किल नहीं होगी। आप एक दफ़ा तदरीज को रखें। मैं इसमें दीनदारों को भी कहूँगी, मैं भी उसी में आ सकती हूँ अगर मैं बेतुकी तबलीग कर रही हूँ। जिस मौजू में आपका दिल लगा आपने उसी को एम्फेसाइज कर दिया। बिलीव मी, मुझे चंद दिन पहले, ये मैं शायद ट्रिप पे थी, तो मुझे किसी ने आकर एक सवाल पूछा, कहने लगी कि मुझे ये बताएं कि औरत मेकअप कर सकती है? तो मैंने कहा क्या हर्ज है? कहती फिर वो क्या हदीस है कि एक औरत की जो होंठ थे उसको आग से जलाया जा रहा था और उसकी आंखों में सिलाइयाँ डाली जा रही थी। उसने दो चार चेहरे के बारे में ना खौफनाक बातें की। तो मैंने कहा ये आपको किसने कहा? कहती फलां जगह एक हमारे तालीम के नाम पे दर्स होता है, तो वहाँ एक किसी ने आकर ये हदीस सुनाई कि जो औरत मेकअप करेगी, होंठों पे लिपस्टिक जिसने लगाई थी उसके होंठ आग से जल रहे थे। उस दौर में पता नहीं लिपस्टिक होती भी थी कि नहीं। बहरहाल उसने इतना हॉरर मंजर पेश किया, वो खौफजदा थी। मैंने कहा कि असल चीज़ पर्दा है, और अल्लाह, मैंने हदीस सुना दी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत वो रंग लगा सकती है जिसकी खुशबू दबी हुई हो, और मर्द वो मेकअप कर सकता है जिसकी खुशबू तेज़ हो लेकिन रंग ना हो। कहती अच्छा लगा सकते, औरतों में भी लगा सकते। कहती नहीं, उन्होंने साफ कहा कि, और वो इतने अजीब गरीब लफ्ज़ बोल रही थी, मतलब औरतों के बारे में बैड वर्ड्स बोल के बता रही थी, कि उन्होंने इस तरह बताया कि सर मुंडियाँ और फलानी और बॉय क्राट और क्या कुछ बन के फिरती हैं, आग इनको लगेगी। अब मुझे आप बताइए, आज आप में से कोई शायद इस हॉल में फर्स्ट टाइम आया हो और आप अंदर तशरीफ़ लाएं और मैं आते ही आपको ये मसले सुनाऊं, आप तो वापसी का दरवाज़ा ढूंढेंगी कि ये मैं कहाँ आके पड़ गई। आज हमारी अधूरी तबलीग ने लोगों को रखा, और इसमें लोगों का भी कसूर है, मैं सच कहूँ, वो पूरा सिलसिला नहीं लेते। जो ए टू जी कुरान को सुनेगा, जो फातिहा से नास तक जाएगा, मैं तो एक कमेंट देकर आगे जाऊँगी कि फातिहा से सूरत नास तक मैंने तुझे रहीम पाया। मैं और आप अगर पूरा कुरान पढ़ गए ना इस दौरे कुरान में, तो फिर हम लोगों की बातों से घबराएंगे नहीं। टुकड़ों में लेते हैं वो, जैसे पजल था ना, एक टुकड़ा लिया, एक छोड़ दिया, एक ले लिया, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि कम से कम एक कुरान तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा हो। जो हिस्सा आपका छुटता है रहता है उसको पूरा मेकअप करें, नोट किया करें कौन सी आयत छुट गई, कब ऐसे हुई। कोई मजबूरी हो सकता है ना, किसी के आने में जल्दी, जाने में जल्दी, या बच्चों के साथ अगर आप घरों से इस वक्त भी सुन रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उन आयतों को नोट कीजिए, आप उसको सामने रखें कि क्या छुटा था पढ़ूं। क्योंकि मसलन आप देखिए, आज ही देखिएगा कुछ अहकाम आते आएंगे जो सिर्फ एक ही दफ़ा कुरान में आते हैं। अगर आपने रोज़े की बात आज नहीं सुनी, पूरा कुरान पढ़े, कोई कहेगा सुनाओ रोज़े का क्या जिक्र हुक्म कुरान में, आप कहेंगे है ही कोई नहीं, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने वो हिस्सा मिस कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें पूरे दीन पर अमल करने वाला बना दे। फिर आप देखिए कि इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से हुकूकुल्ला और हुकूकुल इबाद की तकसीम भी है। बाकी बातें आप उस लेक्चर में से सुनिएगा। अब इन सारी किस्मों को जो इधर बयान थी ना, वन बाय वन करके डिस्क्राइब किया जाएगा, जिसमें पहली चीज़ कसास। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया गया। और वो क्या है? अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि, आज़ाद आदमी ने कत्ल किया तो इस आज़ाद को ही बदले में कत्ल किया जाए। अरबों में होता क्या था कि जब कोई किसी को कत्ल कर देता तो जवाब में उसके गांव के सारे लोगों को मार आते, या कत्ल करता कोई मिसाल है कि किसी को, तो बदले में जाकर उसके गुलाम को कत्ल कर देते। कई लोग खुद किसी को मार के आते, बाद में बदले में अपना गुलाम पेश करते। अल्लाह ताला ने इस जुल्म से बचाया कि जो मारेगा किसी को वही मरेगा, ये डेथ पेनल्टी की बात है। वलब्दु बिलब्दी, और गुलाम बदले गुलाम के, गुलाम कातिल हो तो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा, और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो इस औरत से कसास लिया जाएगा। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी के लिए तैयार हो, किसको भाई कहा जा रहा है? मक्तूल के वारिस। देखिए जरा इस्लाम कितना प्यार सिखाता है हमें कि अगर इवन किसी ने किसी के प्यारे को मार दिया है तो फिर भी वो इंसानी तौर पे भाई तो है, तो क्या किया जाएगा? तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहाकर तस्फिया होना चाहिए और कातिल को लाजमी है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ व रहमत भी है, इस पर भी जो ज़्यादती करे इसके लिए दर्दनाक सज़ा है। और साथ ही फरमा दिया, ये जुमला कहते हैं कि लुगत के एतबार से भारी तरीन जुमला है, यानी इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये जुमला वाकई कुरान में ही आ सकता था। दुनिया की कोई ज़ुबान, कोई डिक्शनरी इस जुमले को नहीं बयान कर सकती कि वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून। अक़ल व ख़िर्द रखने वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज़ करोगे। अब इसमें आपने जैसे कि मौजू सुना, क़िसास क्या होता है कि कोई किसी के साथ जैसा मामला करे आप उसके साथ वैसे ही करेंगे। आज लोगों ने डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी, मकतूल से ज़्यादा उनकी कातिल के साथ हमदर्दी है। आज भी दुनिया में आप देखिए, सऊदी अरब वो मुल्क है कि जहाँ दूसरे मुल्कों की नस्बत इस्लामिक शरीयत है वो नाफिज है। आप देखिए कितना सुकून है। पूरे साल में सऊदी अरब में चंद गिनती के लोग कत्ल होते हैं, और वो मुल्क जो अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया क्राइम्स को रोकने और इस गलत चीज़ों को रोकने पे लगाते हैं, वहाँ आप देखिए कि वो कहते हैं हम काबू ही नहीं कर पा रहे। वजह क्या? अल्लाह ने कह दिया वलकुम फिल कसासी हयातुन। जब किसी को यकीन होता है ना कि इसके बदले में मैं भी मारा जाऊँगा, तो वो कभी किसी को नहीं मारता। और आप देखिए कि ये हम तब बातें करते हैं ना जब हम दूर बैठे हैं, अल्लाह ना करे किसी के बाप भाई को कोई मार दे और ऐसे जुल्म के साथ मार दे, तो उस वक्त आपका क्या दिल करेगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें इस्लाम की सज़ाएं और इस्लामी शरीयत को उस तरीके से पढ़ने वाला बनाए ताकि बाहर वेस्ट में, और ख़ास तौर पे आप बच्चियाँ हैं, स्कूलों में आपके सामने बात की जा सकती है, कॉलेजेस में बात होती है, तो आप इसको साउंड नॉलेज लें इसका, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकें कि बात ऐसी नहीं। हम जब इसको डिटेल से पढ़ते हैं, पूरे फिगर्स एंड फैक्ट्स बताए जाते हैं कि दुनिया के किस मुल्क में इस वक्त क्राइम्स का रेशो क्या है। अल्लाह ताला जब एक बात कह दे तो उसमें मेरा आपका तो कोई इख्तियार भी नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद अब वसीयत के अहकाम आते हैं, क्योंकि इस पूरे हिस्से में हम फिर छोटी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अलवसिया, तुम पर फ़र्ज़ किया गया जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वह अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में इसको बदल दिया तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने नादानिस्ता और कसदन हक तलफी की है और फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान वो इसलाह करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। देखिए ये है अल-क़ुरआनु हयाती, ज़िंदगी। ज़िंदगी के मसाइल तो अल्लाह ने बताए, वसीयत जो डेथ बेड पे की जाती है वो भी बता दी है। वसीयत हकीकत में एक बड़ी अहम बात होती है कि जब कोई दुनिया से जा रहा है उस वक्त वो क्या कहेगा। पहली बात देखिए, खैर कहा इधर माल को। दूसरी बात इस आयत से ये पता चलती है कि मुत्तकी के पास भी पैसा होता है तभी तो वसीयत करेगा। विरसे का तसव्वुर किसके साथ है? पैसे के साथ है। आगे आप पूरे वसीयत के कवानीन पढ़ेंगे तो क्या पता चला कि रिस्के हलाल अगर किसी के पास है, वो उस पर ज़कात भी देता है, हक़ भी पूरे करता है, तो उसका माल उसको नुकसान नहीं देता। ये भी एक रॉन्ग तबलीग है हमारी कि पैसे वालों को हम गुनाहगार समझते हैं, जहन्नमी समझते हैं, और गरीबों को हम कहते हैं ये सीधे जन्नत में जाएंगे। तो आप देखिए अबू बकर कितने अमीर थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने अमीर थे, हज़रत उस्मान कितने अमीर थे। तो पैसा कमाना भी इबादत है। असल चीज़ माल नहीं है, उसकी मोहब्बत है और उसका तरीका है। आप जिस चीज़ को जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी और आप उससे महसूस करके देखिएगा तो आपको उसमें बहुत सारी खैर दिखेगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसके अहकाम इंशाल्लाह सूरत निसा में भी किसी हद तक आएंगे। अब आगे बात आ रही है रोज़ों की। खुश हैं? कितने लोगों को डर लग रहा है? चलिए आइए पढ़ते हैं। और ये याद रखिए कि कुरान पाक में रमज़ान का जिक्र बस इसी जगह पे है, तो जो लोग आज का हिस्सा नहीं सुनेंगे तो वो कह सकते हैं कि रमज़ान का जिक्र ही कुरान पाक में नहीं है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ईमान की नस्बत से पुकारा। देखिए ये कितना प्यारा अंदाज है किसी को पुकारने का। अल्लाह ताला कहते हो अरबो, ओ अजमियो, ओ पाकिस्तानियों, ओ सियालकोटियों, ओ जेलम वालो, ओ सखर वालो, ओ खारिया वालो, छोटी सी एक जगह पे अल्लाह बांध देता है ना। ईमान एक यूनिवर्सल निस्बत है, इसमें अरब भी आ गए, अजम भी आ गए, इसमें सोमाली भी आ गए, इसमें दूसरे तीसरे भी आ गए। कौन आ गए? कि जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की निस्बत से जोड़ा। और आपको पता है कि जब ऐसी कोई आयत नाजिल होती तो हमारे सहाबे कराम क्या कहते थे? कहते थे, ओ साथियों गौर से सुनो। मैं भी आपको कह दूँ, सहाबा की सुन्नत में, गौर से सुनिए, बहुत ऊपर से आपके लिए पुकार आई है। ओ ईमान वालों, तुम्हारे रब ने तुमको पुकारा है, इसलिए गौर से सुनो। और हर जाय अल्लाजी नामनु पे का करें, जी अल्लाह, जैसे कोई पुकारे आपका नाम तो आप खुद ही बोल पड़ते हैं ना, तो इतना डूब कर सुने। इस वक्त आप बिल्कुल बाकी चीज़ों से बेनियाज होकर सोचें कि आपका रब आपको पुकार रहा है। जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और साथ ज़रा सी डिस्ट्रैक्शन हो तो हम कहते हैं चुप करो, बड़ी दूर से कॉल आई है। अब तो वो स्काइप और व्हाट्सएप ने कदर ही नहीं छोड़ी ना बाहर की कॉलों की। एक वक्त याद है आपको, 3 मिनट की कॉल होती थी और वो आधा बुलाने में और आधा खपने में गुजर जाती थी, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। फिर लोग कहते थे, नहीं 3 मिनट की नहीं, 6 मिनट की कॉल करवाना। किस किस को याद है वो वक्त? जी, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। तो ये तो बड़ी लॉन्ग 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 डिस्टेंस कॉल है। अल्लाह से दुआ करें कि मेरे आपके कान इस पे लग जाएं। ये कुरान पूरे का पूरा लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। कहाँ से आए, इन्ना अनज़लना हु फ़ी लैलतिल क़द्र। और ख़ुद को खुशकिस्मत करार दें, चुटकी काटें कि मेरे मालिक, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे पुकारा इतनी दूर से। क्या बड़ी बात थी कि अगर हम मुसलमान ना होते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सफ़ में मेरा आपका नाम ना आता। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या करो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरोकारों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तसल्ली भी दी जा रही है, ख़बर भी दी जा रही है कि रोना नहीं रोज़ों का नाम सुनकर, पहलों पर भी थे। कई बच्चे कहते हैं, हाय हम क्रिश्चियन होते ना तुम रोज़े तो ना रखते, हाय हम जी होते तो रोज़े ना रखते। तो लिख लीजिए, सबसे पहले रोज़े जिस नबी की कौम पर फ़र्ज़ किए गए वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। दो रोज़े उन पे फ़र्ज़ थे। ईसाइयों के रोज़े तो आपको होता है मुसलमानों से बहुत लंबे हैं, लेकिन अब चूंकि वो रखते नहीं हैं तो हमें लगता है रोज़े है ही नहीं है। क्रिश्चियंस पे, ज्यूज़ पे, सब के ऊपर रोज़े रखे हुए थे। अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे क्या बताते हैं कि तुम रोज़े रखो। क्यों रखो? ताकि इससे तवक्को की जाती है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा हो। और डरते क्यों हो? चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं, ज़्यादा नहीं है। सारा साल हम कहते हैं चांद चाहे 30 का हो जाए, 31 का हो जाए, रमज़ान को क्या कहते हैं? अल्लाह 29 का कर दे, अय्याम मादूदात। इसमें दो बातें हैं, एक तो तसल्ली है, गिनती के दिन है, गुजर जाएंगे। और आप देखिए, इधर से यकम एक रोज़ा, फिर दूसरा, फिर 10, फिर पहला अशरा गया, फिर 15 हुए, दूसरा अशरा गया, ताकराते शुरू, ऐसे भक्त से गुड़ जाते हैं। अब तो हमें मुश्किल लग रहे हैं सोच के, जब रखेंगे तो क्या दिल करता है। मैं अक्सर हर रमज़ान में अल्लाह ताला को कहती हूँ कि तेरे नबी की हदीस है कि अगर रोज़े का अजर पता चल जाए तो लोग ख्वाहिश करें कि सारा साल रोज़ा रहे। ये सही हदीस है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, मैं अभी भी यही ख्वाहिश करती हूँ, मुझे अजर नहीं भी पता, लेकिन वाकई, लेकिन आम दिनों में रोज़े रखने मुश्किल लगते हैं। आप देखिए, जिसने रोज़ा रखा था उसको आसान लगता है और दूसरों को मुश्किल लग रहा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़े गिनती के हैं, और इसमें इशारा भी है कि छुटे हुए रोज़े पूरे करो। यहाँ मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि आप सबको गाइडलाइन दूँ। पिछले साल के अगर आपके कोई भी रोज़े छुटे किसी वजह से, बीमारी या कोई तकलीफ थी, अब इन दिनों में रख लीजिए। क्योंकि जब एक साल गुजर जाए और आप नहीं रखेंगे तो फिर अगले साल रोज़ा भी रखना पड़ेगा और साथ उसका कफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो रख लीजिए, वैसे भी अब अल्हम्दुलिल्लाह रखने तो हैं ही हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम रमज़ान के छुटे हुए रोज़े अगले साल शाबान तक जाके पूरे करते थे। तो बहरहाल ये एक हुक्म है, पिछली ज़िंदगी के जो भी आपके छुटे हुए रोज़े हैं इसकी कज़ा रखनी पड़ती है। लेकिन देखिए, हमें किन चीज़ों में डाल दिया शैतान ने? कज़ा उम्री के नाम पर नमाज़ें तो पढ़वाता है, पिछली रोज़े नहीं रखवाता। हालांकि हम पीरियड्स में रोज़े छोड़ते हैं तो रोज़ों की कज़ा रखते हैं, नमाज की नहीं रखते, क्योंकि वो एक दिन की 5 नमाज़ें हैं। अब एक औरत इतने दिन के बाद फारिग हुई तो पहले तो उस दिन की 5 पढ़े, फिर पिछली भी 30 नमाज़ें पढ़े, तो वो कहेगी मैं पढ़ती नहीं हूँ, अल्लाह ने आसानी कर दी, अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो छुटे हुए रोज़े रखिए, अपने गिने, अगर पिछली ज़िंदगी में एहसास नहीं था तो एक एक करके रखिए। पीर जुमेरात का रख लें, इसी तरह सर्दियों में रख लें, और नॉर्वे जाके दिसंबर के सारे महीने के रोज़े रख लें। ब्रेकफास्ट के बाद अभी भूख भी नहीं लगी होती तो मग़रिब का वक्त हो जाता है। तो बहरहाल जहाँ अल्लाह का हुक्म है उसको तो मानना पड़ेगा। हत्ता के हदीस में आता है कि मम माता वालई ही से आमुन, कोई मर जाए और उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ रोज़े हों तो फिर उसका वली यानी उसका वारिस उसके रोज़े रखेगा। तो अपने मरहूमीन के भी रोज़े रखिए, इंशाल्लाह उनको भी अजर मिलेगा, आपको भी मिलेगा। असल मकसद क्या है तकवा? इस पिछले पूरे महीने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वक्त तकवा पे बात हुई है। तकवा क्या है असल में, कि मुझे आपको अल्लाह से शर्म आने लगे गुनाह करते हुए। तो ये रोज़े एक मकसद के साथ होते हैं। 11 महीने अल्लाह ताला कहते हैं लोगों से सोशलाइज करो, मिलो घुलो खाओ, लेकिन रमज़ान अल्लाह ताला से गेट कनेक्टेड। अल्लाह के नबी रमज़ान में 4 चीज़ें बहुत कम कर देते थे। कसीरुल इख्तलात, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, फिर कसरत से खाना, सोना, और नींद भी कम, बातें भी कम, मिलना भी कम। आप सब पहला रोज़ा आ जाए तो उससे पहले मिल मिला लें, और बस इधर ही मिल लिया करें सबसे, या मस्जिद में तरावी पे मिल लें। ये घरों की इफ्तारियाँ, आपके घर में, मेरे घर, आप उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फिर ख़ानदान की तरावियाँ, फिर एक देवर के घर, अब जेठ के घर, अब सास के घर, अब नंद के घर, और माशाल्लाह जिनके पूरे कुंबे हैं अल्लाह उनके सलामत रखे, 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं, इफ्तारियाँ नहीं पूरी होती। फिर कहते हैं अच्छा चलो ईद की दावत में बुला लेंगे, इस साल ना करें। एक औरत पिस जाती है जब 60 लोगों का खाना बनाती है, और उस रोज़े के इफ्तारी के अंदर उसकी अपनी नमाजें भी जाती हैं और आधे लोग बेरोज़ होते हैं। सवाब के लिए रखना है, आप मस्जिद में दे दीजिए, इफ्तारी करा दीजिए, और पहले से खजूरें, अक्लमंद लोगों ने, मेरे ख्याल में सबसे अक्लमंद वो है जिसको सवाब चाहिए, वो तो पहले खजूरें लेगा। और अमेरिका में ये इतना आम है कि लोग रमज़ान से पहले ही खजूरों के डिब्बे गिफ्ट में एक दूसरे के घर दे देते हैं। क्यों? कि मेरी खजूर से आपने रोज़ा खोलना है, क्योंकि आपको अजर मिलेगा, राइट? तो आप कहते हैं नहीं, हम तो पकौड़े से खोलते हैं, समोसे से खोलते हैं। तो बहरहाल जो आपका दिल चाहे, लेकिन यह कि टाइम नहीं वेस्ट करना इस रमज़ान में। वक्त पे बहुत गहरी नज़र रखिएगा। आप यकीन करें जिस दिन से दौरा कुरान शुरू हुआ, मैं आपको अपने लफ्ज़ गिन के बता सकती हूँ, यहाँ से जाकर आने तक जुमले, मेरी किसी से मेरा हाल है फ़ोन पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, चिट चैट, मेरा नहीं ख्याल किसी से भी हुई है, मुझे याद भी नहीं है। यहाँ से घर जाती हूँ, घर से इधर आती हूँ, दिल नहीं करता बोलने को। मुझे ऐसे लगता है कि दौरे कुरान हमें वाकई पहले से तैयार कर देता है रमज़ान के लिए। तो बहरहाल हकूक भी पूरे करें, लेकिन बाकी चीज़ों को भी सामने रखें, और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो आपके मेरे वक्त में बरकत अता करें। फिर उसके बाद फरमाया अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर लें, और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो वो फ़दिया दें। एक रोज़े का फ़दिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कोई ज़्यादा भलाई करे तो ये इसी के हक में बेहतर है। वन तसूमु खैरुल्लकुम, ये है वो हुक्म के लफ्ज़ जिस पे रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। और ये कि अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। बस अब जो शख्स इस महीने को पाए, हमने पाना है इंशाल्लाह, और दुआ करनी है कि फिर अल्लाह ताला से इसका हक अदा करवाए। क्या है उसको लाजिम? इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कि मरीज़ हो या सफ़र पर हो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। कि अल्लाह ने हर एक की रियायत रखी है, तभी तो फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है और सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया इस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार हो, एतराफ़ करो और शुक्रगुजार करो। ये जो लफ्ज़ है ना वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये ईद की तकबीरात की तरफ इशारा है कि रमज़ान में रोज़े रखो और उसके बाद तकबीरात पढ़ो। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी के हर रुख को कवर करते हैं। ईद की खुशियाँ क्यों ना हो, उसका भी आगाज़ देखिए नमाज से होता है, अल्लाह की बड़ाई से होता है। आप ईद पार्टी कब खाएं, आप अच्छे कपड़े बनाएं, आप चूड़ियाँ पहनें, आप मेहंदी करें, लेकिन आप ईद की नमाज़ भी पढ़िए। ईद के दिन तकबीरात का करना शैतान को बुरा लगता है। इस तरीके से हमारे घरों में एक इस्लामिक कल्चर नज़र आता है। हर घर से इस्लाम कि आवाज़ें अगर आएँ तो दूसरे भी पूछेंगे इनको क्या हुआ, और शुक्र किस बात का है कि उसने एक और रमज़ान गुजार दिया, उसने एक और नेकी का मौका दिया। आपको पता है कि रमज़ान के रोज़ों की कितनी वैल्यू है, कि बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के बीच में। अब जब रोज़े की बात आई तो साथ ही दुआ की बात आ गई, वैज़ा साल कई बादी अन्नी फ़ैन्नी करीब, और नबी मेरे बंदे अगर आपसे मेरे बारे में पूछें तो इनको बता दीजिए कि मैं इनसे करीब ही हूँ। अल्लाह का नाम है अलकरीब, महसूस करें सिर्फ उसको, और जब आप में उसका कुरान पढ़ें तो फिर तो और भी कुर्बत महसूस होगी ना। अल्लाह ताला मुझे अपनी कुर्बत दे रहा है आपको। लोगों के जहनों में तसव्वुर क्या है कि खुदा बहुत दूर है। मुशरिकाना मज़ाहिब में खुदा और बंदे के बीच में कई वास्ते और वसीले होते हैं। जो अल्लाह तक बात पहुंचाते हैं। ये जो बुत के सामने बैठते हैं लोग, वो क्या सोच के बैठते हैं कि ये बुत देता है? नहीं, किसी हिंदू से पूछ लीजिए, अगर आपकी दोस्तों में कोई है बड़े प्यार से पूछिए उनको, कोई बुरी बात नहीं है कि ये बताएं कि जब आप किसी मूर्ति के सामने बैठते हैं तो आपका क्या गुमान होता है, तो वो आपको बिल्कुल यही कहेंगे कि मूर्ति कुछ नहीं देती, ये अल्लाह से लेकर देती है। तो हमारा रब क्या कहता है, इन्नी करीब, करीब वाले को छोड़कर दूर वाले को पुकारना ये तो बात नहीं है अकल की। अल्लाह को करीब समझेंगे इंशाल्लाह शिर्क का खात्मा होगा। उजीबु दावत अद्दा, और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है और इसको सुनता भी हूँ। बस उनको चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बई कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम इन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। देखिए, रोज़े के साथ दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हदीस में आता है कि जिन दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता ना, उसमें रोज़ेदार की दुआ भी है। तो रोज़ा रख के वैसे ही एक स्पिरिचुअलिटी आती है, रूहानी तौर पे एक इंसान अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करता है। तो जब मैं और आप अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ रखेंगे, तो आप देखिएगा कि उसके बाद फिर उसकी बात भी मानने को दिल करेगा। कोई अच्छी सी दुआ करें इस वक्त इस सोच के साथ कि अल्लाह करीब है। याद रखिए, वजूद के एतबार से आसमान पे है, लेकिन अपना इल्म, अपनी समात और अपनी बसारत के साथ इस वक्त भी अल्लाह ताला को पता है मैं क्या सोच रही हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितनी मुश्किलों में से निकल कर घर से आए, आपको मुझे नहीं पता इस वक्त घर में क्या है, अल्लाह को पता है। उसके सुपुर्द करके सब बच्चों बड़ों को पीछे हो जाएं कि मेरे रब मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया। और ये ताल्लुक़ बिल्ला ही आपकी दौलत है, इसकी बुनियाद पर आप मुश्किल को सही करा लें। रुकी हुई कश्तियाँ चलने लगेंगी, डूबते हुए सफीने तैरने लगेंगे, अगर आप इन्नी करीब को समझ गए और आप अपने रब को पुकार के देखिए। अल्लाह को पुकारने वाले कभी मायूस नहीं होते। तो कोई अच्छी सी दिल की दुआ करिए, मैं आपको चंद सेकंड देती हूँ। फिर उसके बाद शौहर बीवी का एक खूबसूरत ताल्लुक, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 187, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। पिछली अकवाम में ये मना था। पहले दौर में रोज़ा रात का भी होता था, सिर्फ मगरिब से इशा के बीच में थोड़ी देर खाने पीने की इजाज़त होती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत को ये सहूलत दी गई कि रोज़ा खोलने के बाद से अगले दिन सुबह तक आपके लिए बहुत सारी पाबंदियाँ खाने की पीने की किसी भी ताल्लुक़ की उसको खुला कर दिया गया। और बीवी और शौहर के ताल्लुक़ को कितना खूबसूरत कमेंट दिया। आज तक आपने जितने खूबसूरत कार्ड पढ़े हों शौहर बीवी के मोहब्बत के, हेल मार्क और हेल मार्क क्या हैं, जिनके छपे हुए कार्ड या अखबारों में आने वाले चुटकुले, उस सबसे खूबसूरत रोमांटिक जुमला हुन्ना लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन, तुम उनका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है। इस पे ज़रा शौहर बीवी के ताल्लुक़ को देखिए। देखिए, हमने पीछे पढ़ा कि जूँ ही आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो साथ ही फिर उनकी बीवी पैदा कर दी। पहला रिश्ता जो इस ज़मीन पर कायम किया गया वो माँ बेटे का नहीं था, भाई बहन का नहीं था, वो शौहर बीवी का था। यहाँ से आप इस रिश्ते का तकद्दस देखिए। और यहाँ तो कह दिया कि औरत और मर्द अपने एक दूसरे के लिए लिबास की हैसियत रखते हैं। कैसे? आप देखिए कि लिबास बंदे के जिस्म के साथ रहता है ना, इसमें इशारा है कि शादी के बाद शौहर बीवी को साथ रहना चाहिए। ये इंतहाई अननेचुरल है कि बीवी कहीं शौहर कहीं। फिर बाद में आप देखिए कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा बाहर रहने वाले लोगों के साथ ये बहुत मसला होता है, बेटियां कहीं तो बेटे कहीं, बेटे कहीं तो बेटियां कहीं। बाज़ दफ़ा मर्द कमाने के लिए जाते हैं, 6-6 साल दुबई रह कर आ जाते हैं, ये अननेचुरल तरीका है। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ती हैं। याद रखिए, आज मादा परस्ती इतनी आम हो गई, डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो शादी हो ना, और अगर हो गई तो फिर दोनों को साथ रहना चाहिए। जिधर रहना है, इधर रहना है तो इधर, उधर रहना है तो उधर। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लिबास खूबसूरती का जरिया होता है। तो शौहर बीवी साथ चलते फिरते अच्छे लगते हैं, एक दूसरे का हुसन होते हैं। फिर आप देखिए, लिबास आपके ऐब छुपाता है ना, आपके जिस्म पे मेरे जिस्म पे कई ऐब हो सकते हैं। कभी आप सोचें इस बात पे, गौर करें, इंशाल्लाह आगे सूरत अल अराफ में बात होगी तो वहाँ मैं इसको डिटेल से वाज़े करूँगी। लेकिन हम अपने जिस्म को देखें, इन कपड़ों के साथ हम कितने हसीन लगते हैं, लेकिन जिस्म को अगर खुले हालत में देखें तो गोश्त का एक पहाड़ लगता है। इसी तरह से आप देखिए कि लिबास जो होता है ये इंसान को गर्मी सर्दी से बचाता है। आप गर्मियों में नरम कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में गर्म पहनते हैं। इसी तरह शौहर बीवी एक दूसरे के साथ गर्मी सर्दी के साथी होते हैं। ये नहीं कह दिया कि लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट अदर साइट, और पहली नज़र में शादी और दूसरे में तलाक और तीसरे में अलग हो गए। آج اسلام نے اتنا خوبصورت اس کو میسج دیا کہ شادی کے بعد ایک عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ کتنا جسمانی سکون حاصل کرتے ہیں، پھر اسپرچول نیڈ ہے، دوستی ہے، فرینڈشپ ہے، رات کو اکیلے میں ڈر لگے گا، گھر میں شوہروں کبھی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو رکھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لباس جتنا پرانا ہوتا ہے نا، اب آپ بڑی خوش ہوں گی، مجھے پتا یہ بات خاص طور پہ ہماری آنٹیوں نے آج آ کے انکل جیز کو تو سنانی ہے، تو آج انکل جیز بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ نیا لباس چبھتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن خود بہت کیئرفل بھی ہوتا ہے کہ ہائے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو، لیکن جو کپڑے پہنتے جائیں پہنتے رہے، کافی پہنے، وہ نرم ہوتے ہیں۔ تو بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہے، وہ اتنی ریلیکسنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مرد کا مزاج سمجھتی ہے کہ انہوں نے نہا کے تولیہ رکھنا ہی بیڈ پہ ہے، اب میں کیا کروں، مان جائیے۔ شروع کی بیوی، نئی بیوی بڑی چبھتی ہے، اس کے تو لاڑ دیکھنے پڑتے ہیں، بیگم حضور، اس کا دوپٹہ لے لے کے پیچھے پھرنا ہے، پرس اٹھانا ہے، پرانی بیوی کو کون پوچھتا ہے، ہاں؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک بیوی کہتی کہ وہ شروع میں تو آپ میری بڑی تعریف کرتے تھے کھانا پکانے پہ، اب کیا ہوا، بات سمجھ گئے، آگے لطیفہ آتا ہے کسی کو، پر پاکستانی جوک ہے، میں نہ ہی سناؤں تو اچھا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ فرق ہوتا ہے شروع کے دنوں میں بعد میں۔ یہ رشتہ جتنا پرانا ہے اتنا خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نئی نئی شادی، میں کہتی ہوں نئی نئی شادی کچھ نہیں ہوتی، ہوش ہی نہیں ہوتی، ماتی ماری ہوتی ہے بندے کی، پرانی شادی زیادہ مزے کی ہوتی ہے، جس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پہلے سے بتاتا ہے ان کو کیا چاہیے، ان کی کیا ضرورت ہے، اور ہم مزاج ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا لباس ہے۔ اور آپ دیکھیں بیوی کیسا مرد چاہتی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، آپ اور میں جو کپڑے پہنتے ہیں یہ ہماری پرسنالٹی دکھاتی ہے، کچھ لوگوں کو کیسے کپڑے اچھے لگتے ہیں، کچھ کو کیسے اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح رشتے کے انتخاب میں ایک لڑکی کا مزاج کھلتا ہے، کیسا لڑکا وہ چوز کر رہی ہے، اور اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ بہت اہم ہے، اس کی مزید ڈیٹیلز ابھی نہیں دی جا سکتی، حالانکہ مجھے پتہ کہ آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے اس موضوع پہ، لیکن ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی سفیدی کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا دین، شوہر بیوی کے تعلق کو عبادت کہہ دیا، اجر رکھ دیا، ایک دوسرے کے لیے ریلیکسیشن ہے، خوشی کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ لگا دی کہ مزاج کے فرق کے باوجود بھی لوگ ساتھ رہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا دین واقعی بہت خوبصورت ہے، اگر میں اور آپ اس کی قدر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز تھی، اور وہ کیا ہے کہ جس کا ذکر رمضان کے ساتھ آئے گا، وہ کیا ہے کہ جب روزہ رکھا آپ نے تو صبح سے کب تک رکھنا ہے، اس کا حکم اگلی آیت میں، ثم اتم الصیام الى الليل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے، عبادات معاملات ساتھ ساتھ، ساتھ روزے کی باتیں، ساتھ شوہر بیوی کے تعلق کی باتیں، کہیں اعتکاف کی باتیں، کہیں دوسری باتیں، اور اب روزے کی بات کی۔ اور روزے کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کائنات کی ہر چیز روزہ رکھتی ہے، یہ درخت بھی تو روزہ رکھتے ہیں، کب، خزاں میں، آٹم میں ان کے پتے کہاں جاتے ہیں، جانور ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی نہیں ہوتا صحراؤں میں تو جانور جا کے ریت میں چھپ جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز کا روزہ ہے۔ ایک اصل روزہ جس کے لیے یہ روزہ آپ کو مجھے سکھاتا ہے وہ کیا ہے، اس کا ذکر ہے، لکھ لیجئے، رشوت۔ قرآن کیا کہتا ہے رشوت کے بارے میں، مال ناحق کے بارے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے، ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، رمضان کے روزوں کے فوراً بعد مال ناحق سے روکا گیا، یہ ہے روزے کی حکمت، کہ آپ روزہ رکھ کے حرام سے بچے، تاکہ 11 مہینے حرام سے بچنے کی توفیق حاصل ہو۔ تو روزہ رکھنے کے بعد اگر انسان یہ سبق نہ سیکھے تو پھر کیا کہنے۔ اور یہ رشوت کے لیے ڈائریکٹ آیت ہے کہ جب کسی کو مال پیش کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، حدیث میں آتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو ہوتا ہی نہیں رشوت کے بغیر کوئی کام، تو دینا چھوڑ دینا، ایک سال کوئی کام نہیں ہوگا، تو رشوت والوں کو سمجھ آ جائے گی ہمیں رشوت تو ملنی نہیں، تو کام ہونے لگے گا۔ ذرا سی بات ہوئی آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ اگلا تو پھر اپنے آپ کو دوسری طرف سے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے پاک کرے۔